सबको नमस्कार। ये शंका समाधान बात यहाँ कोई विद्वता की नहीं है, एक भाई अपने परिवार से बात कर रहा है, किसी की बात है। गुरु महाराज का परिवार उनका वृहत रूप है, शंका समाधान के जरिए परिवार से बात हो सके और अगर कुछ लोगों को इससे लाभ मिल सके तो यही एक कोशिश है। इस सत्संग के बहुत से बुजुर्गों ने समय समय पर मेरी बहुत सी शंकाएं दूर की, तो मुझे भी ये मौका मिल रहा है, इस लायक हूं नहीं हूं लेकिन कोशिश में कर रहा हूं। अशोक, पहला प्रश्न कहाँ से है?
हाँ सर, ये पूछना चाह रहे थे कि हमारे शरीर की प्रॉब्लम रहती है शरीर में सर।
हाँ, तो हम सब लोग गुरु महाराज से प्रार्थना कर लेंगे। जब भी हम लोग साधना में या ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो माया कुछ न कुछ अपने जोर लगाती है कि इस तरफ हमारा रुझान न हो, तो बाधाएं तो सामने आती ही हैं, कभी शारीरिक कभी मानसिक और भी दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं, गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर लगे हुए हैं, उस पर लगे रहें।
प्रणाम भाई जी।
आपका क्या नाम था?
सियाराम जी। आप कहाँ से हैं?
गोरखपुर से हैं सर।
जी
भाई जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम आज 4 वर्ष से आपके सत्संग से, रामाश्रम सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो हम गुरु महाराज तो है नहीं, तो अब हम गुरु बनाना चाहते हैं, तो किसको माने गुरु?
ये प्रश्न यहाँ अक्सर आया करता है
जी।
असल में हर जगह तो क्या होता है कि हमको बतला दिया जाता है। इस सत्संग में गुरु महाराज ने तो हमेशा ये कहा कि हम जो आया उसको दादा गुरु महाराज को संभला दिया, और गुरु महाराज ने जैसे खुद भी लिखा है और हमने पढ़ा भी है कि और जगह तो सुनते हैं कि पारस लोहे को सोना बनाता है, हमारे यहाँ पारस से पारस बनता है। तो गुरु महाराज के बाद पंडित जी महाराज, परमपूज्य जिया माँ, परमपूज्य बड़े भैया, तीनों जो किसी एक के पास साधक गया उसको दूसरे के पास भेज दिया, और जिसने, मैंने तो अपने जीवन में यही सुना कि उनमें से किसी से भी अगर साधक का प्रेम हो गया और उन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया, तो अब फिर प्रश्न ये हो जाता है कि अब उनमें से कौन गुरु गद्दी पे है, कौन गुरु है। ये बड़ा एक हमारे यहाँ ये कहिए कि एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जिसमें बड़ी अलौकिक सी चीज है कि आपको बताया नहीं जाता। ये गुरु महाराज ने भी लिखा है कि गुरु मिला तब जानिए जब मिटे मोह संता। तो जहां जिसकी जहां रुझान हो गया वहीं से आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि जिन सबका मैंने नाम लिया और आज भी वो अपने गुरु को, फिर गुरु महाराज को, गुरु महाराज दादा गुरु महाराज को, और इस तरह से वो सिलसिला तो हमें वहीं पहुंचाएगा। अब हम कहां से जुड़ते हैं, तो उसके लिए गुरु महाराज ने किताब भी लिखी संत सहजोबाई में, उन्होंने बताया कि गुरु को कैसे ढूंढना चाहिए, गुरु कैसे पता लगे कि कौन है।
हम लोग पूरे परिवार सर नॉन वेज हैं, तो अभी हम लोग से नॉन वेज छूट नहीं रहा, क्या उसके लिए कोई मतलब विशेष?
देखिए कि बात ऐसी है कि अगर जोर जबरदस्ती की जाए
जी,
तो वो काम अगर होगा भी तो ठीक नहीं होगा
जी।
तो गुरु महाराज ने खुद भी कभी किसी से ये नियम लागू नहीं किया कि ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने 2-3 तरीके जरूर बताए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा इस तरफ जिसका रुझान करना हो, जिसकी वृत्तियां थोड़ी सुधारनी हो, तो उसको जब खुद सत्संग में ध्यान में बैठो तो उन्हें अपने पास बैठा लो और ये देखो कि प्रकाश हमारे ऊपर जो आ रहा है वो उनके ऊपर भी जा रहा है, तो ऐसा करने से होता है, फर्क होता है। दूसरी चीज क्या है कि जब हम जैसे हमारा काम यहाँ पे ऐसा है कि गुरु दरबार में आके गुरु जैसे बनना है, तो जो पंडित जी महाराज क्या करते थे कि गुरु से मिलना एक बात है, गुरु में मिलना दूसरी बात है। तो हमें गुरु में मिलना है, यानी उनके जैसा बनना है। तो जैसे जैसे हम उनके जैसे बनते जाएंगे तो उनके पास जो भी आया उसका जीवन बदल गया। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होना चाहिए कि हम किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करें, मगर जो हमसे हमारे आसपास है उससे अपने आप वृद्धियां जो है साबित होती चली जाए। तो इसमें दोनों ही बातें हैं कि एक तो अपनी प्रार्थना का फल उन्हें दें और दूसरी बात यह है कि अपने को इतना सात्विक बनाएं कि उसका असर दूसरों पे होने लग जाए और कुछ करने के लिए।
भैया जी प्रणाम, महेंद्र बोल रहा हूँ जयपुर से।
हाँ नमस्कार महेंद्र।
भैया मेरा एक क्वेश्चन है, काफी दिनों से मेरे माइंड में चल रहा है। जैसे मैं रेगुलर ध्यान में तो नहीं करता, लेकिन आज चिंतन जो हमेशा आप एक बार बताते हैं हमेशा अपने भंडारे में या अपने सत्संग में, तो चिंतन जरूर मैं रेगुलर करता हूँ, लेकिन ध्यान में रेगुलर नहीं कर पाता मैं। तो बेनिफिट क्या उसी में उतना ही मिलेगा, मैं चिंतन करता रहूं हर वक्त वो ठीक रहेगा या ध्यान जरूरी है?
जहां तक करमपुर जी पापा जी ने, करमपुर जी छोटे भैया ने तो चिंतन पर बहुत जोर दिया। जो चिंतन है उसी का एक दूसरा स्वरूप है, जो पान वान खाते हैं तो पान का खाना अपना चलता रहता और हम अपने काम जो करने होते हैं वो करते रहते हैं। तो चिंतन ऐसी चीज है जो पान तो कुछ ही टाइम हो सकता है, चिंतन ज्यादा टाइम हो सकता है। और असल में दोनों जगह हम गुरु से अपनी सुरती की धार मिला रहे हैं, वही हमें करना है। तो असर दोनों का एक ही है। तो ध्यान करते करते साधक की स्थिति ऐसी होती है कि वो हर समय चिंतन करने लायक हो जाता है। तो अगर हम ऑलरेडी चिंतन कर सकते हैं, सुरती की धार उस तरफ लगा सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है भैया जी, प्रणाम।
सत्य जी नमस्कार।
हाँ नमस्कार सर, मैं बलिया से बोल रहा हूँ। गुरु जी
कहाँ से बोल रहे हैं?
बलिया जिला से बोल रहा हूँ। हेलो
जी बोलिए।
हाँ गुरु जी, पहले हमारा ध्यान के लिए हम फोन किए हैं। गुरु जी हमारा ध्यान फोन करते हैं, बात करते हैं, ध्यान इधर उधर कट जाता है। गुरु जी ध्यान के लिए हमको आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा ध्यान हरदम गुरु जी के चरणों में रखा रहे।
अक्सर साधकों के ये स्थिति आती है जब या तो ध्यान नहीं लगता है या ध्यान में जाते ही थोड़े देर में मन इधर उधर होने लगता है। तो हमें तो कर्तव्य बुद्धि के साथ ध्यान में बैठ जाना है, और उसमें अलग अलग स्थितियां आती हैं रज तम और सत के प्रभाव में हमारा मन इधर उधर जाता है। हमें उससे कुश्ती नहीं लड़नी है, कोशिश यही करनी चाहिए कि हम दक्षता भाव से उसको देखते रहें।
गुरु जी एकदम इधर उधर मन बिखर जाता है, थोड़ा भी बुरा से बुरा काम दिखाई देने लगता है। गुरु जी
मन से कुश्ती नहीं लड़े। जब भी हम मन से कुश्ती लड़ते हैं तो हम कर्ता बन जाते हैं। हमारी साधना दृष्टा साधना है, और हमें मन को कभी कभी चलायमान है तो उसको देखते रहें, उससे कुश्ती न लड़े। धीरे धीरे अपने आप मन थोड़ा कस जाएगा। अपना प्रयास जारी रखें और तुम्हारा से प्रार्थना करते हैं।
गुरु जी एक और प्रश्न है। गुरु जी
बोलिए।
गुरु जी हम ये बहुत गरीब परिवार से हैं। गुरु जी मैं अपनी लड़की की शादी के लिए वर भी देख लिया हूँ। गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं शादी से उतरे हो जाऊँ। गुरु जी यही आशीर्वाद के लिए आपसे बहुत बहुत इसी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अपनी लड़की के शादी से उत्तीर्ण हो जाऊं। गुरु जी वर भी देख लिया हूं, सब कुछ ये है। गुरु जी
हम सब लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि तो भी विघ्न है दूर हो, गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक हो। हम सब यही प्रार्थना।
हाँ गुरु जी सच्चे प्रणाम। गुरु जी
नमस्कार। नमस्कार।
हेलो।
हाँ जी
प्रणाम भैया। हाँ। पूजा बोल रही हूँ मैं।
हाँ नमस्कार पूजा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार
भैया, ऐसे में देवगढ़ से बिलोंग करती हूँ, पर मैं भुज में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग यहाँ है।
अच्छा अच्छा बहुत अच्छा
जी जी। भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी भैया बहुत नेगेटिविटीज आती है, कोई गलत ख्याल पकड़ लेता है तो लगता है कि छूट नहीं रहा है, बस वही चीज सारे दिन दिमाग में, चाहे ध्यान में बैठे तो भी वही ख्याल आता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए?
पिछले हफ्ते आध्यात्मिक विषय मीमांसा से मैं पढ़ रहा था, तो उसमें गुरु महाराज ने कहा है कि दो शक्तियां हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव ऊपर उठाती है, नेगेटिव जो है नीचे गिराती है और संसार की तरफ ले जाती है। तो हम सबको ये नेगेटिव पावर जो है वो हम सब के जैसे पीछे से पड़ी रहती है, क्योंकि वो नेचुरल है। संसार में रहेंगे तो नेगेटिविटी तो बढ़ेगी। तो उसमें एक चीज तो गुरु महाराज ने ये कहा कि हम जिन लोगों का संग करते हैं उसका संग का असर जो है वो ऐसा होता है कि वो नेगेटिविटी बढ़ाता है। इधर उधर की बातें सोचने की बजाय अगर थोड़ा सा सत की तरफ यानी गुरु ईश्वर की तरफ अपना सुरती की धार लगाएंगे और उनसे शक्ति खींचेंगे तो हमारे में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और हमारे में ही नहीं वो पॉजिटिविटी फिर हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास लोग हैं घर में बाहर, उन पे भी उसका धीरे धीरे असर होगा। तो समाज में, घर में, अपने में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए यही गुरु महाराज ने हमें ये तरीके दिए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हम सब को इस माया के चुंगल से निकालें। ये नेगेटिविटी जो बढ़ती चली जा रही है आजकल, मैं सबसे ये सुनता हूँ, तो किसी दिन मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट भी करूँगा, मगर बात यही है कि हम किस तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं, सुरती की धार किस तरफ लगा रहे हैं और किन लोगों से हम मिल रहे हैं। तो अक्सर ये होता है कि हम भंडारों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छी बातें होती हैं, तो थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ती है। लेकिन आसपास में कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसका असर एक सेकंड में खत्म कर देते हैं।
जी भैया, ऐसा मैंने भी महसूस किया है कि जब सत्संग भंडारे वगैरह में रहते हैं तब ऐसा कोई ख्याल नहीं आता, वहां से जब चले आते हैं तो फिर से वही सब चीजें। बट अभी बिल्कुल भैया, मैं आपकी बात को फॉलो करूंगी और कोशिश करूंगी कि पॉजिटिविटी लाऊं अपने व्यवहार में।
प्रणाम। गुरु महाराज दया करें, हम सबको ये शक्ति दें, यही हम लोगों की प्रार्थना है।
भैया एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूंगी।
जरूर।
कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशीं रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। अल्लाह रे चश्मे यार की मौजिज बयानिया, हर एक को है गुमा के मुखातिब हम ही रहे।
बहुत सुंदर।
जय गुरु।
नमस्कार।
हाँ हेलो, प्रणाम भैया जी।
हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे?
हम पटना से पिछले सप्ताह आकांक्षा बोल रहे थे।
जी नमस्कार आकांक्षा।
पूछ रहे थे ये क्वेश्चन कि जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो आँख खोलते हैं तो थोड़ा चक्कर जैसा लगने लगता है, ऐसा क्यों होता है?
तो अभी अगर आप सुन रहे थे तो ध्यान और चिंतन की बात हो रही थी, तो ध्यान थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है, एकाग्रता की जरूरत होती है, थोड़ा मस्तिष्क पे जोर पड़ता है। तो चिंतन जो है उसमें थोड़ा लाइट रहता है, तो आप ध्यान थोड़ा कम करें या थोड़े दिन बंद कर दें और चिंतन की ओर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। जब याद करेंगे उनकी तरफ, अपनी स्मृति की धार तवज्जो उनकी तरफ करेंगे तो वही शक्ति आएगी, वही काम चलता रहेगा। तो चिंतन करें।
हेलो, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है।
नमस्कार, बताइए।
मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं पूजा पर बैठता हूँ तो मैं चुंबला वाले बाप जी का मैं ध्यान करता हूँ। बचपन से ही मैं चुंबला वाले बाप जी का ध्यान करते आया हूँ। और जैसे क्रिया में बताई जाती है कि आपके सामने परमात्मा है, उनके हृदय से प्रकाश आता है, अपने हृदय में भरना, तो मैं तो उन्हीं को देखता हूँ सामने। ये मैं सही करता हूँ या गलत करता हूँ?
हम लोग गुरु को शरीर या मनुष्य अगर मान ले तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु और ईश्वर में कोई फर्क नहीं बतलाया गुरु महाराज ने। तो असल चीज जो है वहां तक पहुंचने के लिए हमें स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण की तरफ बढ़ना होगा। हम स्थूल में अटक गए तो वो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रकाश स्वरूप में देखना है, और जैसे ईश्वर को समझना मुश्किल है वैसे ही गुरु को समझना भी उतना ही मुश्किल है। तो प्रकाश स्वरूप में देखकर उस प्रकाश को अपने अंदर में भरकर उन्हीं के स्वरूप में आना है। तो बाकी गुरु महाराज दया करेंगे, सब उनकी कृपा से सब हम सब लोग अपने ध्येय की तरफ बढ़ते रहे। हाँ बोलिए।
हाँ मैं नारायणपुर जय से बोल रहा हूँ, जयलक सिंह भैया जी।
हाँ नमस्कार, नमस्कार जयलक सिंह। हाँ कहिए।
हमारी दुकान है, दुकान नहीं चलती बहुत दिन से
जी,
बहुत परेशान से हैं, और मेरे हाथ भी फूल आई हुए एक महीने से, और बहुत परेशान हूँ। 25-30 साल हो गए, 4 बच्चे हैं और कुछ नहीं है हमारे पास, बहुत परेशान है
जी।
किराए पर रहते हैं, मकान तक नहीं, कुछ भी नहीं, दुकान चलती नहीं, दुकान कर रखी है रेडीमेड की, बहुत ही परेशान है।
गुरु महाराज से प्रार्थना है कि जो कष्ट और परेशानियां आ रही हैं उनको हटाएं और आपको शक्ति दें, अपने प्रयास में लगे रहें। हमारा काम तो प्रयास करना है, और गुरु महाराज के हाथ में ही फल है, तो उनसे यही प्रार्थना है कि समृद्धि दें और शक्ति दें। जब भी हम लोग साधना में लगते हैं तो माया के थपेड़े जरूर सामने आते हैं और परेशानियां अक्सर सामने आया करती हैं। तो ऐसे में गुरु महाराज से प्रार्थना कर लेना ही हमारा साधन है। जब भी हम गुरु महाराज का विचार करते हैं तो हमें ये निश्चय समझना चाहिए कि वो हमको देख रहे हैं। यही परम पूज्य पंडित जी महाराज ने लिखा था, और उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। नमस्कार।
हेलो।
हाँ कौन बोल रहे
हैं? भैया जी प्रणाम।
हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे
हैं? सब नमन आपको। हमारा वो प्रश्न वही था कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो गुरु जी का ध्यान करते हैं, सब बड़े गुरु महाराज जी का, तो
जी
पहले तो आप कुछ देर में कुछ सालों से हमको ध्यान हमारा नहीं लगता है, और हमारे अपने दिखाई पड़ने लगते जो चले गए नहीं है, घबरा जाते हैं, टेंशन रहता है, काफी टेंशन रहता है।
टेंशन किस वजह से रहता है?
हमारे हस्बैंड भी एक्सपायर हुए थे 10-12 साल पहले, और अब बबू हमारी बड़ी एक्सपायर हो गई 6 मंथ में केवल
जी।
थोड़ा
महाराज से प्रार्थना है कि हम सबको शक्ति दें, अपनी कृपा करें, जिससे इन सब स्थितियों में हम उनके चरणों में लगे रहें।
वैसे सरकारी सत्संग में जाती है तो गुरु जी हमारा मन लगता है वहाँ, अच्छी तरह से लगता है। अब किसी तरह से ऐसा हो गया कि घर में गुरु महाराज की जगह इनको हमारे फादर जो नहीं है, हमारे हस्बैंड, मतलब ये लोग दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ते हैं। वैसे हमको साक्षात दिखते थे, पहले हमको गुरु महाराज जी के साथ फोटो दिखाई पड़ती थी, साफ दिखते थे, और अब से मैं गुरु महाराज हम अपने पास ही रखती हूँ, पंडित के रूप में, अतिथि रूप में, हस्बैंड पास लेते हैं
जी। ये गुरु महाराज ने ये लिखा है कि साधना में हमारी जो स्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं, तो हर समय एक नहीं रहता। तो जैसे सत, रज और तम का प्रभाव जो है अलग अलग स्थितियां लाता रहता है, और कभी मन एकदम शांत हो जाता है, कभी चलायमान हो जाता है, कभी एकदम इवन वो आनंद और वो सब हटा के फिर मूर्ता आ जाती है। ये इस तरह की चीजें जो हैं वो साधना में आती हैं। तो गुरु महाराज ने तो यही कहा है कि सिर्फ कर्तव्य बुद्धि से हमें बैठ जाना चाहिए उनके सामने, और बाकी मन जो कर रहा है उसको देखते रहें, उससे कुश्ती ना लड़ें, और धीरे धीरे अपने आप वो स्थिति जो है वो निकल जाएगी। कभी कभी ये स्थितियां ज्यादा देर रह जाती हैं, कभी जल्दी ही निकल जाती हैं। तो उनसे प्रार्थना यही है कि फिर ये चंचलता और मूर्ता की स्थिति से स्थिरता और आनंद की स्थिति।
जी इससे भी हमको टाइम नहीं मिलता है कुछ, मतलब घरेलू काम की वजह से, तो जैसे ध्यान में मिलता है पहले बच्चे को चले जाते थे तब ध्यान में रखते थे, आप पोता पोती चले तब ध्यान में रखते हैं, तो हमारा मन लग जाता है, तो ऐसा जरूरी है कि इससे सामने रहते हैं?
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने तो जैसे अक्सर और जगह पे समय बतलाया जाता है, तो प्रातः सायं तो इसलिए कहा कि अगर वो ज्यादा सूट करता है कि भाई दिन का काम शुरू करने से पहले और दिन का काम खत्म करने के बाद अगर आपको और कोई समय ठीक लगता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करिए अगर हम बांध लेते हैं तो उस समय अपने आप वृत्ति जो है वो थोड़ी एकाग्र होने लगे, मतलब थोड़ा मन की एकाग्रता में थोड़ा सहायता मिलती है। अगर हम कोशिश ये करनी चाहिए कि समय और स्थान जो है वो एक बना लें उसी पे बैठें, मगर ऐसा कोई नहीं है, गुरु महाराज ने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बतलाया कि इसी टाइम पर बैठना है। अपना प्रयास जारी रखें, ठीक होगा, तो गुरु महाराज कृपा करेंगे। नमस्कार। आध्यात्मिक विषय मीमांसा से एक दो बातें हैं जो गुरु महाराज ने लिखी हैं, ये भी प्रश्न उत्तर ही है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, वो एक ग्रेजुएट अध्ययनशील और धार्मिक संस्था के उपदेशक थे, घूमते घामते मथुरा आ गए, तो उनका जो वार्तालाप हुआ तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या मत है, तो शांति और आनंद के समुद्र तक पहुंचना और उसमें डुबकी लगाना ही हमारा मत है, इसी को हम मानवीय धर्म मानते हैं। तो आप बोले कि नहीं, मेरा तात्पर्य यह नहीं था, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किस संप्रदाय, किस पंथ और किस मजहब के अनुयायी हैं। आपने कहा कि प्रत्येक मजहब और प्रत्येक संप्रदाय में कुछ ऐसी अच्छाइयां हैं जो मानवीय धर्म से संबंध रखती हैं, मनुष्य को ऊंचा उठाती हैं, और कुछ ऐसी रूढ़ियां हैं जो उस संप्रदाय या मजहब वालों ने अलग अलग बना ली है। मैं प्रत्येक मजहब से अच्छी शिक्षाओं को ले लेता हूं और उनकी बाहरी रस्मों और थोथी रूढ़ियों की ओर आंख उठा के भी नहीं देखता, किसी से द्वेष नहीं रखता। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, शैव, शाक सब मेरे लिए समान है, इसलिए यह कहना ही ठीक होगा कि मैं सारे धर्मों को मानता हूं और किसी को भी नहीं मानता। मेरा रास्ता उस स्थान से शुरू होता है जहां से यह मजहबी दुनिया नीचे रह जाती है। आगे उन्होंने कहा कि आप जो साधना बतलाते हैं उसके लिए क्या करना होगा, तो जिस स्थान पर, उत्तर यह था गुरु महाराज का कि जिस स्थान पर आप ठहरे हुए हैं वहां से यहां तक आने का थोड़ा कष्ट उठाना जो होगा, मेरे सम्मुख केवल बैठ जाना होगा, बस यही साधना है। तो इसके अतिरिक्त और कोई विशेष तैयारी करनी होगी कि अपने अभिमान और अपनी प्रतिष्ठा की पोटली को सर से उतार कर फेंक देना, स्टूडेंट या विद्यार्थी की पोजीशन में अपने को ले आना, पहला जो पढ़ा लिखा है उसको थोड़ा भुला देना और जैसी आज्ञा दी जाए उस अनुसार चलना। विद्वान और प्रतिष्ठित आदमी को ऐसा करने में कठिनाई होती है और वह अपनी प्रतिष्ठा को धक्का देना नहीं चाहता, अपनी विद्वता के अभिमान को त्याग कर छोटा नहीं बनना चाहता, उसका मन ऐसा करने के लिए उसे आज्ञा नहीं देता, उसे उलझन में डाल देता है। ऐसा आदमी मन को थोड़ी देर के लिए दबोच के आरंभ तो कर लेता है पर उन्नति नहीं कर सकता, इस महाविद्या में वो निपुण नहीं हो सकता। तो क्या पुस्तकीय ज्ञान इस विद्या के सीखने में सहायक नहीं बन सकता? आपने बताया कि पुस्तकों में बाहरी नक्शा उसका खींचा गया है, उस महान बिल्डिंग के बाहरी दरवाजे का वर्णन किया गया है, अंदर क्या अद्भुत दृश्य हैं, कैसे अलौकिक आनंद हैं, कैसी शीतल और शांतिमय स्रोत हैं, कैसी मनमोहक फुलवारी है, यह सब उस महल में प्रवेश होने पर ही पता लगता है। उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता और लेखनी से लिखा नहीं जा सकता। ओम शम। तो चलिए आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। सबको नमस्कार।
Day.